हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। यहाँ हजारों कहानियाँ हैं आपके लिए। अबीर अकरम और रिया के हल्दी समारोह में पहुँचा था। वहाँ पहुँचकर उसने पहले ज़ोया को देखा और फिर एक धमाकेदार डांस परफॉर्मेंस शुरू कर दी। वो डांस कम और खुद को तकलीफ़ ज़्यादा दे रहा था। उसे रोकने के लिए जैसे ही रोहित आगे बढ़ा, अबीर ने अपना हाथ दिखाकर उसे रोक दिया। उसका डांस काफ़ी दर्द भरा था। उसने उस डांस में खुद को जितना हो सका उतनी तकलीफ दी थी। अबीर न जाने खुद को किस बात की इतनी तकलीफ दे रहा था। अबीर अकेला ही डांस कर रहा था, कोई भी उसके आसपास नहीं था। ज़ोया उसे बड़ी हैरानी से देख रही थी, यहाँ तक कि उसकी आंखें भी अपने आप छलक आई थीं। वहाँ मौजूद लोगों में इतनी भी हिम्मत नहीं थी कि वे अबीर राठौर का डांस देख सकें। धीरे धीरे अबीर ने रोहित को इशारा किया और देखते ही देखते सभी लोग नज़रें और सिर झुकाए वहाँ से जाने लगे। धीरे धीरे अबीर राठौर के आदमी भी वहाँ से चले गए थे। अब उस पार्क में केवल अबीर राठौर, ज़ोया, अकरम और रिया थे। पूरा पार्क खाली हो चुका था। अबीर के इशारे पर डीजे वाला भी अपना डीजे लेकर चला गया था। अबीर डांस स्टेज से नीचे उतरकर अकरम, रिया और ज़ोया की तरफ जाने लगा। ज़ोया का तो हैरानी से बुरा हाल था। वो यही सोच रही थी कि आखिर ये अबीर राठौर क्या चाहता है। मैंने उसे जवाब दे तो चुकी हूँ, फिर ये अब यहाँ क्या करने आया था। अबीर सीधा अकरम के पास गया और बोला, मुझे तुमसे कुछ कहना है। अकरम ने रिया और ज़ोया को अपने पीछे करते हुए कहा, तुम चाहते क्या हो? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई बिन बुलाए यहाँ आने की? क्या कहा तुमने? बिन बुलाए? शायद तुम्हें तुम्हारी बहन ने नहीं बताया कि ये खुद जाकर मुझे तुम्हारे हल्दी समारोह के लिए इन्वाइट करके आई है, इसलिए मैं यहाँ आया हूँ। अकरम सवालिया नज़रों से ज़ोया को देखने लगा। तब ज़ोया ने कहा, वो भाई, एक्चुअली वो पार्क के उस साइड जो घर है वो इसी का है। अकरम ने अपना सिर पकड़ लिया। उसने तो कभी नहीं सोचा था जिससे बचकर वो यहाँ आकर रहने लगा था वो तो पूरा उसी का मोहल्ला और इलाका था। ज़ोया की कोई गलती नहीं थी इसमें, अकरम ने ही उसे बुलावे के लिए भेजा था। लेकिन वो घर अभी राठौड़ का निकलेगा ये उन्होंने सपने में भी नहीं सोचा था। तब अकरम ने कहा, मिस्टर राठौड़, आखिर आप हमसे चाहते क्या हैं? तब अबीर ने कहा, मुझे तुमसे कुछ सवाल पूछने हैं। ठीक है, हम वहाँ बैठकर बात करते हैं। नहीं, हम जो भी बात करेंगे वो आपकी बहन के सामने ही करेंगे। अकरम हैरानी से अबीर को देखने लगा, तुम्हारी बात से मेरी बहन का क्या कनेक्शन? तब अबीर ने कहा, कनेक्शन है, सारा इन्हीं से तो कनेक्शन है। मतलब, मैं कुछ समझा नहीं। तब अबीर बोला, एक्चुअली अकरम साहब, मुझे घुमा फिराकर बात करना नहीं आता है, तो मैं आपसे साफ साफ कह देता हूँ, मैं आपकी बहन से शादी करना चाहता हूँ। जैसे ही अबीर ने ये बात बोली, अकरम और रिया के होश उड़ गए। अकरम को तो ऑलमोस्ट चक्कर आ गए थे। तब अकरम थोड़ा हकला कर बोला, ये आप क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? क्यों नहीं हो सकता है? क्योंकि ज़ोया तो वो अकरम कुछ कहने ही वाला था कि तभी अबीर उसकी बात काटते हुए बोला, माँ बनने वाली है, यही ना? जैसे ही अबीर ने ये कहा कि ज़ोया माँ बनने वाली है, तब अकरम की हैरानी का ठिकाना नहीं रहा। तब वो एक नज़र अबीर पर डालता तो कभी ज़ोया पर। वहीं दूसरी ओर अरहम सड़कों की धूल खाकर घर पहुँच चुका था। वो अमेरिका जाने से पहले अपना एक ज़रूरी काम करना चाहता था, लेकिन वो नहीं कर पाया था, तो उस काम को न करने की उदासी उसके चेहरे पर आ गई थी। तब अरमान ने उससे कहा था, क्या हुआ ब्रो, कुछ बात है क्या जो तुम कहना चाहते हो? अरहम ने उसे टाल दिया और अपने कपड़े पैक करने के लिए चला गया। उसे आज रात को ही अमेरिका के लिए निकलना था। अरमान उसे उसके कमरे तक जाते हुए देखता रहा और फिर अपनी सोच छटक कर आगे बढ़ गया, क्योंकि आज उसे एक कंस्ट्रक्शन साइट देखने जानी थी, तो वो उसकी तैयारी करने लगा था। अरमान की ये साइट शहर के बाहर की थी, जिसमें उसे पूरे दो दिन लगने वाले थे। अरमान सबसे पहले अरहम को विदा करना चाहता था, उसके बाद वो खुद निकलने वाला था। अरमान ने मेहर को बुलाया और बोला, तेरे दोनों भाई जा रहे हैं, एक शहर से बाहर जा रहा है तो एक देश से बाहर जा रहा है, तो हमारे पीछे पूरे घर की जिम्मेदारी तुम्हारी है, तुम्हें ध्यान से रहना होगा। बाकी सब काम तो मैं अपने आईपैड के थ्रू कवर कर लूँगा, बस घर में तुम दोनों ही रहोगे, राजवीर और तुम। जैसे ही मेहर ने ये सुना, उसे दहशत से होने लगी और वो कांपते हुए बोली, क्या भाई, मैं भी आपके साथ चल सकती हूँ? अरमान उसे हैरानी से देखने लगा और बोला, नहीं, तुम वहाँ क्या करोगी? और वैसे भी फिर यहाँ राजवीर भी तो है, उसका ख्याल कौन रखेगा? अरमान की बात सुनकर मेहर कुछ और बोलने की हिम्मत ही नहीं कर पाई। वहीं दूसरी ओर अबीर ने कहा, देखिए, मैं जानता हूँ ज़ोया माँ बनने वाली है और इस बच्चे का बाप इस दुनिया में नहीं है, लेकिन आप मेरी बात का यकीन करें, मुझे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। मैं ज़ोया के साथ साथ उसके बच्चे को भी अपनाने के लिए तैयार हूँ। अबीर को लग रहा था कि शायद ज़ोया का पति इस दुनिया में नहीं है, इसीलिए शायद वो अब शादी नहीं करना चाहती है, क्योंकि उसके पति की आखिर निशानी उसके पेट में पल रही थी और शादी करके वो अपने बच्चे के साथ नाइंसाफी नहीं कर सकती थी। क्योंकि मेरी मोहब्बत इतनी कमज़ोर नहीं कि ज़ोया के माँ बनने की खबर सुनकर टूट जाए। जी अकरम साहब, मैं मोहब्बत करता हूँ आपकी बहन से, और मैं ये भी जानता हूँ कि आपकी बहन मुझे पसंद नहीं करती है, लेकिन मैं इससे इतनी मोहब्बत करूँगा कि वो भी मुझे मोहब्बत करने को मजबूर हो जाएगी। अबीर ने मुस्कुराते हुए ज़ोया की ओर देखते हुए कहा था। अकरम की हैरानी खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही थी। अबीर राठौर उसे शॉक्ड पर शॉक देता जा रहा था, और अबीर यहीं पर चुप नहीं हुआ था। उसने अकरम का हाथ अपने हाथ में थाम लिया और बोला, मैं आपसे वादा करता हूँ, मैं पूरी ज़िंदगी ज़ोया का आपसे भी ज़्यादा ध्यान रखूँगा, आपसे भी ज़्यादा प्यार करूँगा, और जब तक मैं ज़िंदा हूँ, अबीर राठौर की बीवी को कोई आँख उठाकर भी नहीं देख पाएगा। अबीर अकरम से बोल रहा था, देखिए अकरम साहब, आपकी बहन ज़िंदगी बन चुकी है मेरी, और इसके लिए मैं वो करने जा रहा हूँ जो मैंने आज तक किसी के लिए नहीं किया। ऐसा कहकर अबीर घुटनों के बल ज़मीन पर बैठ गया और अकरम से बोला, प्लीज़ मेरी शादी अपनी बहन से करा दो। अबीर के इस रिएक्शन पर अकरम का मुंह खुला का खुला रह गया था, और तब अकरम आगे बढ़ा और उसने कंधों से पकड़कर अबीर को उठाया और बोला, हमें आप सोचने का थोड़ा सा समय दें। ज़ोया अकरम की बात सुनकर हैरान हो गई थी, और वो अकरम के पास जाकर चिल्लाते हुए बोली, ये सब क्या है भाई, इसमें सोचने जैसा क्या है? आप साफ साफ मना क्यों नहीं कर रहे हैं? ये इम्पॉसिबल है, मैं किसी भी कीमत पर ये शादी नहीं करूँगी। प्लीज़ इन्हें साफ साफ बोलें ये बात और चलता करें इन्हें। बहुत हो गया इन अमीर राठौर का ड्रामा, ज़रूर इसमें इनकी कोई चाल है, ज़रूर इन्हें यहाँ किसी ने भेजा है हमसे बदला लेने के लिए। अबीर ज़ोया की बात सुनकर तप गया, और उसने ज़ोया का चेहरा अपने हाथों में भर लिया और उसे अपने फेस के और करीब करते हुए बोला, श्श, तुम हाँ कहो या ना कहो, शादी तो मैं तुमसे ही करूँगा, समझी तुम? मैं हर हाल में तुम्हें अपना बना कर रहूँगा। ज़ोया उसकी बात सुनकर और तप गई और उसे ज़ोर से धक्का देते हुए बोली, नहीं, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। ऐसा कहते हुए वो भागकर अपार्टमेंट की ओर चल पड़ी। रिया भी उसके पीछे पीछे चली गई थी। अकरम और अबीर उसे देखते रह गए।
तब अबीर ने अकरम को देखते हुए कहा, मैं सच में उसे प्यार करता हूँ, पर अबीर साहब, आप हकीकत नहीं जानते हैं, ज़ोया का एक पास्ट है, अगर वो माँ बनने वाली है तब भी मुझे कोई एतराज़ नहीं है, मैं बस उसे अपना बनाना चाहता हूँ। तब अकरम ने कहा, नहीं अबीर साहब, चीज़ें आपको जितनी ज़्यादा सीधी दिख रही हैं उतनी है नहीं, ज़ोया की ज़िंदगी कांटों से घिरी हुई है, उसका अतीत बेहद भयानक है जो आपकी सोच से काफ़ी परे है। ये सब बातें सुनते ही अबीर के कान खड़े हो गए और बोला, आप आखिर कहना क्या चाहते हैं, मैं कुछ समझा नहीं। अबीर साहब, मैं आपको कुछ नहीं बता सकता हूँ, मैं आपसे बस इतना ही कहना चाहूँगा, मैं ज़ोया से आपके लिए एक बार बात ज़रूर करूँगा, मुझे आपका ज़ोया को ये जानते हुए भी अपनाना कि वो माँ बनने वाली है वाकई काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, जो अपने आप में काबिले तारीफ है, मैं ज़रूर ज़ोया से आपको लेकर बात करूँगा, प्लीज़ मुझे थोड़ा टाइम दे। ऐसा कहकर अकरम अपने घर की ओर जाने लगा था, तब अबीर ने उसे रोक लिया और बोला, आखिर क्या है ज़ोया का सच, मैं अभी जानना चाहता हूँ। लेकिन अकरम ने कहा, अबीर साहब, आप मुझे जाने दे, मैंने कहा ना, आप मुझे सोचने के लिए थोड़ा टाइम दे, ताकि मैं ज़ोया से ठंडे दिमाग से बात कर सकूँ। तभी अबीर अकरम से बोला, रुकिए अकरम साहब, मैं ज़ोया के बारे में सब कुछ जानना चाहता हूँ, वो भी अभी। अकरम अबीर की बात सुनकर हैरान हो गया। तब अकरम ने कहा, अबीर साहब, मैं आपसे इतना ही कहना चाहूँगा, अगर आपने ज़ोया का भयानक अतीत जान लिया तो आप जो ये उससे प्यार करने का दावा कर रहे हैं ना, वो आप सब भूल जाएंगे और उससे शादी करने का ख्याल आप अपने दिमाग से निकाल देंगे, तो मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूँ, मुझे थोड़ा टाइम दो, प्लीज़, बिना ज़ोया से बात किए मैं आपको कोई प्रॉमिस नहीं कर सकता हूँ, लेकिन ज़ोया का क्या अतीत है वो मुझे जानना है। तब अकरम ने कहा, ठीक है, आप चलिए मेरे साथ।